జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధారి, గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధారి, యశోదానందన వ్రజ జనరంజన, యశోదానందన వ్రజ జనరంజన, యమునా తీరా వనచారి, యమునా తీరా వనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధారి, గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధారి, యశోదానందన వ్రజ జనరంజన, యశోదానందన వ్రజ జనరంజన, యమునా తీరా వనచారి, యమునా తీరా వనచారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారి, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారి, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jai Jai Prabhupada, प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल
विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. कल की कृष्ण कथा में हम ये चर्चा कर रहे थे कि इंद्रदेव के स्तुति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को थोड़े अच्छे उपदेश दिए। उन्होंने इनसे कहा कि देखो इंद्र, तुम्हारे यज्ञ को मैंने रोक दिया तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे मन में तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारे शक्ति का प्रभाव कुछ अच्छा नहीं है। तुम बहुत ज्यादा उन्मत्त हो गए हो, नशे में आ गए हो तुम्हारे इन ऐश्वर्यों के कारण, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ऐसे कृपा की है तुम्हारा यज्ञ रोक के। तो ईर्ष्या से नहीं, कृपा है ये। और जो व्यक्ति, हे इंद्र, जो अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के नशे से अंधे हो जाते हैं, वो मुझ भगवान को जो दंड पाणी कहलाते हैं, अर्थात जो दंड का दंडा धारण किए हुए पास में ही खड़े हैं, उनको नहीं देखते हैं। माम दंड पाणिम न पश्यति। और यदि मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा करना चाहता हूं, यस्य च इच्छामि अनुग्रहम, तो फिर मैं क्या करता हूं? ताम भ्रमश्यामि संपद्यो, उसके संपदा के, उसके समृद्धि के पद से मैं उसको पतित करा देता हूं, उसको गिरा देता हूं। और ये मेरी कृपा है उसके ऊपर, उसके इस घमंड के बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके नशे को उतारने के लिए। तो अब हे इंद्र, तुम लौट कर चले जाओ और अपना अधिकार अर्थात इंद्र का पद अच्छी तरह से संभालना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कार्यों को जो तुम्हारे निहित कार्य हैं, मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, प्रभु दत्त सेवा है तुम्हारी, वो तुम अच्छी तरह से करना, सौम्य स्वभाव से करना और कभी इस प्रकार का घमंड नहीं करना। ऐसा कह के फिर वो इंद्र से कहते हैं, गम्यताम शक्र भद्रम वह, अब तुम जा सकते हो अपने धाम में, तुम्हारा कल्याण हो। तो ऐसे जब श्री कृष्ण इंद्रदेव को वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन इंद्रदेव के कार्य अभी तक समाप्त हुए नहीं, क्योंकि इंद्रदेव और सुरभि वो अभी श्री कृष्ण का अभिषेक तो करना चाहते हैं, अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुरभि देवी सामने आती हैं और सामने आकर वो कहती हैं, अथाह सुरभि कृष्णम अभिवंद्य मनस्विनी स्वसंतान रूपा मंत्र्य गोप रूपिणमीश्वरम। अथाह अथ आह, इसके बाद आह मतलब बोली, कौन बोली? सुरभि ही, मनस्विनाम, मनस्विनी अथा जिन जिन इसका चित्त जो है वो बहुत शांत है। तो सुरभि देवी का चित्त बड़ा शांत था। गाय जो है वो सत्वगुण की पशु मानी जाती है ना, और सुरभि तो गोलोक की गाय है, हालांकि वो आध्यात्मिक जगत की गोलोक की गाय नहीं है, फिर भी इस भौतिक जगत के स्वर्गलोक में भी एक जो गोलोक है वो वहां की गाय है। तो सुरभि देवी का चित्त बड़ा शांत था और सुरभि देवी ने किससे कहा, कृष्णम गोप रूपिणम ईश्वरम। उन्होंने कृष्ण से कहा जो कि ईश्वर हैं, परंतु इस समय गोप रूप में हैं, एक ग्वाल बाल का रूप धारण किए हुए हैं। ऐसे ईश्वर के सामने आके सुरभि, जिसका चित्त बहुत शांत था, निर्मल था, वो कहने लगी, अभिवंद्य, अपने सम्मान को व्यक्त करने लगी, नमन करने लगी, उपामंत्र्य, उनके ध्यान के लिए वो कुछ इशारा करना चाहती थी ताकि श्री कृष्ण उनकी ओर थोड़ा ध्यान दें। और सुरभि देवी अकेली नहीं आई थी वहां पर, संतान अपने संतानों को साथ में लेकर आए थे। अब सुरभि के संतान कौन है? क्या वो गोलोक से सब गायों को लेकर आई थी? नहीं, ये सारे संतान थे उनके व्रज के गाय जो श्री कृष्ण के लीला में शामिल थे। बड़े प्रेम से सुरभि देवी ने इन गायों को भी अपने वंशज समझ लिया, हालांकि वो नहीं थे, परंतु दोनों गाय हैं, सुरभि भी गाय है, ये भी गाय है, सुरभि भी कामधेनु है और वृंदावन के गाय भी तो कामधेनु है। कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, धेनु नाम अस्मि सुरभि कामधुक, धेनु नाम अस्मि कामधुक, गायों में से मैं कामधुक हूं, कामधुक कहता कामधेनु सुरभि हूं। तो यहां इस भौतिक सृष्टि में भी ये सुरभि है। तो सुरभि देवी अपने प्रेम से गायों की ओर देखती है और उनको भी साथ में ले आती है। ये सब मेरे स्वजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो सबको ले आती है क्योंकि वो जानते हैं कि श्री कृष्ण गायों से कितना प्रेम करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जिस प्रकार से चंद्रदेव कृष्ण को अपना वंशज मानते हैं, उसी प्रकार से सुरभि देवी इन वृंदावन के गायों को अपना वंशज मानती है। जैसा कि हम कह चुके हैं पहले भी कि वृंदावन के गाय कोई साधारण गाय नहीं है, इनमें से थोड़े गाय ऐसे हैं जो सीधे गोलोक वृंदावन से आए, जिनको नित्य सिद्ध गाय कहते हैं। वो सदैव श्री कृष्ण की लीला में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, श्री कृष्ण को बड़ा दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। नित्य रूप से श्री कृष्ण इन गायों को गोलोक वृंदावन में चराने ले जाते हैं और वापस ले आते हैं। प्रतिदिन यह होता है गोलोक वृंदावन में भी, जैसे कि यहां भौम वृंदावन में श्री कृष्ण ने किया था। तो थोड़े ऐसे नित्य सिद्ध गाय हैं और थोड़े ऐसे गाय हैं जो साधन सिद्ध हैं, जो यहां पूर्व जन्मों में बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, परंतु जो श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गाय का रूप धारण करके व्रज लीला में शामिल होने के लिए योग्य हो गई थी। ये दोनों प्रकार की गाय थी, दोनों सिद्ध थी, दोनों आध्यात्मिक पूरी तरह से। सुरभि गाय ये तो स्वर्गलोक की गाय है, स्वर्गलोक के निवासी भी तो भगवान के भक्त हैं, परंतु सुरभि गाय जो आई थी गोलोक से, भौतिक गोलोक से, वो श्री कृष्ण की पार्षदा नहीं थी जैसे कि ये अन्य गाय थे वृंदावन के। फिर भी स्नेह के कारण सुरभि ने इन गायों को अपना समझा। आप जानते हैं कि क्षत्रियों के दो मुख्य वंश होते हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर, और पृथ्वी लोक ही नहीं, इस सारे ब्रह्मांड में। एक है सूर्य वंश, जिसमें कि श्री रामचंद्र प्रकट हुए, और दूसरे हैं चंद्रवंश या सोमवंश जिसमें कि श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो क्योंकि चंद्रवंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए तो चंद्रदेव मानते हैं कि श्री कृष्ण मेरे परिवार के हैं। वास्तव में क्या श्री कृष्ण किसी के परिवार के हैं? चाहे वो चंद्रदेव हो, सोमदेव हो या कोई भी और देव हो, श्री कृष्ण तो इस भौतिक जगत के ही नहीं है। यहाँ के जो वंश हैं इनसे श्री कृष्ण का कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वो उस वंश को प्रदीपित करते हैं, उस वंश को प्रसिद्ध बनाते हैं उस वंश में जन्म लेने से। यदि कोई व्यक्ति किसी एक ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो उस व्यक्ति की पहचान इस कुल से होती है कि देखो ये उस कुल का आदमी है, इस वंश का आदमी है ये। अच्छा अच्छा ऐसा है तो ये ठीक है, बहुत बड़ा आदमी है। परंतु श्री कृष्ण के लिए, हालांकि साधारण भाषा में कहने के लिए हम कहते हैं ये यदुवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, लेकिन वास्तव में वंश की पहचान श्री कृष्ण से होती है कि यदुवंश वो है जिसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस वंश का गौरव बढ़ जाता है। श्री कृष्ण को किसी बड़े या छोटे वंश की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े वंश में जन्म लेके श्री कृष्ण और बड़े नहीं हो जाते, नहीं किसी छोटे या निम्न श्रेणी के वंश में जन्म लेके श्री कृष्ण छोटे हो जाते हैं, नहीं। सदा स्वरूप संप्राप्त है, श्री कृष्ण अपने स्वरूप में सदा प्राप्त को सदा प्राप्त करके रहते हैं, सदा स्थित रहते हैं। उनको कोई वंश से लेना देना नहीं है, ये केवल उनकी लीला है कि वो ऐसे प्रकट होते हैं। कभी कभी बंगाल के लोग चैतन्य महाप्रभु को बंगाल के भगवान मानते हैं, अन्य लोग भी ऐसे कहते हैं चैतन्य ये तो बंगालियों का भगवान है। हमारे भक्त बताते थे वो बंबई में रहा करते थे, एक बार वो किसी काम से बंगाल में गए थे कलकत्ता में, और उनके पास गौर निताई की छोटी मूर्तियां थीं, तो प्रातः काल में उनकी सेवा करने के लिए उनको कोई पुष्प चाहिए थे, तो इधर उधर जाके वो थोड़े पड़ोसियों के घर से बाहर से रास्ते से वो थोड़े फल ले रहे थे, फूल ले रहे थे। तो जो पड़ोसी आदमी था उसने पूछा, कौन है वो, क्या कर रहे हो? मैं फूल ले रहा हूँ। किसके लिए ले रहा हो? मुझे पूछा नहीं। नहीं, भगवान की पूजा के लिए ले रहा। कौन भगवान? गौर निताय। अच्छा, गौर निताय हमारे बंगाल के भगवान, ठीक है ठीक है, ले जाओ ठीक है। हालांकि वो आदमी भले भक्त ना हो, सेवा भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं बंगाल के थे ना चैतन्य, मैं भी बंगाल के। वैसे देखा जाए तो क्या चैतन्य महाप्रभु बंगाल के हैं? चैतन्य महाप्रभु तो आध्यात्मिक जगत के हैं, वो बंगाल का गौरव बढ़ाने के लिए बंगाल में प्रकट हुए। कभी कभी लोग कहते हैं कृष्ण हमारे भारत के हैं, कृष्ण भारतीय हो गए। कृष्ण तो कृष्ण है, कृपा करके भारत भूमि में प्रकट हुए, इसको पुण्य भूमि बनाने के लिए। तो खैर, इस प्रकार से संबंध लोग जोड़ देते हैं, ये स्वाभाविक है। उसी प्रकार से सुरभि देवी का स्वसंतानैः अपने संतानों को लाना, या इन गायों को, वृंदावन की गायों को अपना संतान समझना, ये भी स्वाभाविक था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। और वास्तव में श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही सोचा। श्री कृष्ण ने भेद नहीं किया दोनों में कि ये सुरभि गोलोक की गाय है और ये मेरे जो साथ में गाय हैं ये मेरे गोलोक वृंदावन की गाय हैं, नहीं। श्री कृष्ण ने भी उन गायों को अपना ही माना और सुरभि को भी अपना ही माना। तो आगे फिर सुरभि क्या कहती है, आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ बोर्ड पे लगा हुआ है ये श्लोक। सुरभि रुवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम् अच्युता कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम् अच्युत कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम् अच्युत कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथ वयम् अच्युत और कोई कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम् अच्युत माता सुरभि कह रही हैं। माता सुरभि ने कहा, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे योगियों में श्रेष्ठ, हे विश्व की आत्मा तथा उद्गम, आप विश्व के स्वामी हैं और हे अच्युत, आपकी ही कृपा से हम सबों को आप जैसा स्वामी मिला है। कृष्ण कृष्ण, जब सुरभि ऐसा कहते हुए कृष्ण के पास आती हैं, तो उनके अंदर दिव्य आनंद के लहरें चल रही होती हैं। भाव विभोर होकर वो कृष्ण का नामोच्चारण करती हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, आप तो महान योगी हैं, सबसे बड़े योगी हैं। और ये सत्य है, कृष्ण का नाम है योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर हैं वो, जितने भी बड़े योगी हैं उनके भी स्वामी हैं। यहां तक कि जितने भी बड़े बड़े देवतागण हैं जिनको जन्म से ही योग सिद्धि प्राप्त होते हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा श्री कृष्ण की योग शक्ति है। बल्कि श्री कृष्ण की योग शक्ति अचिंत्य है, अनंत है, हमारे नाप तोल के बाहर है। ब्रह्मा जी ने अपने योग शक्ति का उपयोग करना चाहा श्री कृष्ण के खिलाफ, और उन्हीं पर वो लौट के आया। उन्हीं ने श्री कृष्ण के दिव्य योग शक्ति का प्रदर्शन देखा, और केवल एक झलक मात्र, एक लेश मात्र झलक श्री कृष्ण के योग शक्ति का ब्रह्मा जी ने देखा। पूर्ण शक्ति तो भगवान ने नहीं प्रदर्शित की। ब्रह्मा जी क्या शिव जी भी? शिव जी ने कई बार भगवान की योग शक्ति का प्रदर्शन देखा, वो भी भ्रमित हो गए। शिव जी जब मोहिनी रूप देखना चाहते थे तो शिव जी भ्रमित हो गए, इंद्रदेव तो भ्रमित हो ही गए हैं। जितने भी देवता हैं जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े बड़े योगी हैं, वो सब श्री कृष्ण की योग शक्ति के सामने भ्रमित हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की मोहित करने वाली शक्तियों में से जो बांसुरी कृष्ण की होती है, बकल वेणु बांसुरी के ध्वनि होते हैं होती है, वो तो सभी को ऐसे मोहित कर देती है कि कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी अपने कमलासन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, उनका ध्यान भंग हो गया, बस वो ऐसे ही रह गए। चतुष्कुमार भी अपने ध्यान को छोड़कर इस विषय के ऊपर ध्यान करने लगे कि ये कौन सी ध्वनि है, ये राग है, ये क्या है, ये दिव्य ध्वनि आज तक हमने नहीं सुनी है, अद्भुत ध्वनि है। इंद्रदेव तो रोने ही लग गए थे इस ध्वनि को सुनकर बड़े आनंद से। तो ये है श्री कृष्ण जो कि योगेश्वर है। इंद्रदेव ने अपने योग शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति का एक लेश मात्र प्रयोग करने से हम देखते हैं कि क्या हुआ। इसलिए अब सुरभि माता कह रही हैं, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन जो विश्व के आत्मा हैं, हे विश्व संभव जो विश्व के उद्गम हैं, आपकी कृपा के कारण ही, हे लोकनाथ, आपके कृपा के कारण ही अभी हमें आप नाथ मिले हैं, नाथ हो गए हमारे यहां, हम अभी सनाथ हो गए हैं, अभी हमें सच्चा नाथ मिल गया है। सुरभि के कहने का अभिप्राय ये है कि वो तो भौतिक गोलोक से आती है जो स्वर्ग लोक का भी एक हिस्सा है, और देवराज हैं इंद्र, तो सारे स्वर्ग लोक के निवासियों के नाथ इंद्रदेव हैं। तो सुरभि देवी कह रही है कि इंद्रदेव हमारे नाथ होने थे, ऐसा हम सुनते हैं कि इंद्रदेव हैं नाथ, और हमारी रक्षा इंद्रदेव को करनी थी क्योंकि वो हमारे नाथ हैं। रक्षा करने की बात तो क्या, हमारे रक्षक तो भक्षक बन गए। देखो ब्रज के ऊपर ऐसे उन्होंने कार्य किया, सारे ब्रज भूमि को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और मेरे ये सारे वंशज, मेरे जो प्रिय गाय हैं, बछड़े हैं, बैल हैं, वो सब मर जाते। ये हमारे नाथ कहलाते हैं, इनको तो इन गायों की रक्षा करनी चाहिए थी, परंतु इनको मारना चाहा कृष्ण ने, इंद्र ने, क्षमा कीजिए, और वैसे आपने आके इनकी रक्षा की, तो वास्तव में आप ही नाथ हैं। ये इंद्र हैं, ये झूठे नाथ हैं, सच्चे नाथ आप है, इसलिए हम अभी सनाथ हो गए हैं। पहले हम अपने आप को सनाथ समझ रहे थे, लेकिन अब जान गए हैं कि हम सनाथ नहीं थे, उस समय हम अनाथ थे, अब हम सनाथ हो गए हैं। जब आपको नाथ के रूप में प्राप्त किए हैं, नाथ मतलब स्वामी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभुपाद जी कई बार अपने किताबों में, अपने तात्पर्यों में, प्रवचनों में बताते हैं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता है वो अनाथ है, लावारिस, इस दुनिया में घूमते रहता है नाना योनियों में। कहने के लिए तो एक जन्म में किसी को माता पिता मानता है या किसी को अपना स्वामी या प्रभु मान लेता है, लेकिन ये सब झूठे नाथ है, सब थोड़े क्षण के लिए नाथ हैं, बस नकली नाथ। तो ऐसे लोग अनाथ होते हैं। और अनाथ की दशा क्या होती है? अनाथ की दशा अच्छी नहीं होती है, परंतु जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो सनाथ होते हैं, इसलिए वो बिंदास होते हैं, हमेशा आराम में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। ये है सनाथ होने का लाभ। सब लोग नहीं जानते किसका आश्रय लेना चाहिए। कई लोग अपने आप को धार्मिक मानकर देवियों की, देवताओं की आश्रय लेते हैं, परंतु सुरभि के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है। सुरभि ने जो सीखा वो हमें सुरभि देवी के अनुभव से सीख लेना चाहिए कि देवताओं का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वही धोखा हो जाएगा जो सुरभि देवी को हुआ था। ये इंद्रदेव ने हमारी रक्षा करने के बजाय हमारे वंशजों की हत्या करना चाहा, निराश हो गई सुरभि। तो इसी प्रकार से हम भी देवताओं के शरण में जाके निराश हो जाएंगे अंततः। देवतागण क्या प्रदान कर सकते हैं हमें? केवल ये आकाश पुष्प के जगत से और थोड़े आकाश पुष्प दिला सकते हैं, सपने का सुख दिला सकते हैं, और कुछ नहीं दिला सकते, वो भी कर्मबद्ध हैं। तो हमें कैसे कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाकर दिव्य आनंद प्रदान करेंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए यहां पर सुरभि देवी कहती हैं अच्युत। अच्युत अर्थात जिसका च्युत नहीं होता है कभी भी, जो जिसका पतन नहीं होता है। च्युत और अच्युत, जो देवतागण हैं वो च्युत हैं, क्योंकि उनका पतन होता है, जैसे इंद्रदेव का हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पतन कभी नहीं होता है, इसलिए वो हमारे सच्चे नाथ हैं। जो लोग देवताओं का आश्रय लेते हैं, श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, वो अल्प बुद्धि वाले हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ति यान्ति मामपि। वो कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि उनके जो फल हैं वो क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। तो ऐसे फल के लिए किसी की पूजा करना, इसमें कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। परंतु जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण कहते हैं वो मेरे पास चले आते हैं, मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण से ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधेर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, जिन लोगों ने समाश्रित ये मतलब जिन्होंने पद पल्लव आपके चरण कमलों के आश्रय स्वीकार किए हैं, ये चरण कमल जो है ये प्लव, प्लवम अर्थात एक नौके के बराबर है। और आप कौन हैं? आप है महत पदम। महत अर्थात ये सृष्टि, पदम अर्थात आश्रय। तो आप सारे सृष्टि के आश्रय हैं। महत का अर्थ ये भी होता है जो महात्मा लोग होते हैं, बड़े साधु होते हैं, भक्त होते हैं, आप उनके भी आश्रय हैं। और महत पदम पुण्य यशो मुरारे है, आप मुरारे के नाम से विख्यात हैं सारे सृष्टि में जो आपके आश्रय में है। तो जो लोग आपके चरण कमलों के नौके को स्वीकार करते हैं और उसका आश्रय लेते हैं, भव अम्बुधि वत्स पदम, ये भव जो है, ये भौतिक सृष्टि जो है, एक विशाल समुद्र के समान है जिसको पार करना प्राय असंभव है। परंतु ऐसे विशाल समुद्र वत्स पदम, एक बछड़े के खुर के नीचे जितनी जगह होती है उसमें यदि पानी भर जाता है तो उस छोटे से स्थान को पार करने के लिए कितनी कठिनाई होती है किसी व्यक्ति को? कुछ भी नहीं, बड़े आराम से व्यक्ति लांघ के जा सकता है। तो इसी प्रकार से हे प्रभु, जो व्यक्ति आपका भक्त बन जाता है उसे इस भवसागर को पार करना ये बहुत आसान हो जाता है और वो आपके पास पहुंच जाता है जो कि परम पदम है। आपके चरण कमल ही परम पद है, सबसे ऊंचा उद्देश्य है किसी के लिए भी। तो वो केवल उस परम पद के उद्देश्य को स्वीकार करते हैं, उसे ध्येय बना के अपने जीवन को बिताते हैं, आपकी सेवा करते हैं। परंतु वो इस जगत में रहना नहीं चाहते हैं, जो कि क्या है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। तो ऐसे लोग नहीं स्वीकार करते हैं इस पदम पदम यद विपदम वाले जगत को, जिसमें हर पद में विपद है। किसी को पता नहीं कि अगला कदम लेने से अब क्या होगा, कोई यहाँ खड्डा है, कुछ क्या है और अगले कदम की बात तो क्या है। आजकल ये कहना चाहिए अगला सांस लेने से, क्योंकि आजकल ये बीमारी चल रही है ना, H1N1 फ्लू, स्वाइन फ्लू। तो सभी लोग डरे हुए हैं, कोई डॉक्टर लोग भी हैं जो उनको कठिनाई होती है संभालने के लिए। इतने सारे मरीज आ रहे हैं पुणे में, बंबई में, विदेशों में, तो लाखों की संख्या में ऐसे लोगों को ये बीमारी हो चुकी है। तो ये है संसार, कहां कब क्या होगा, किस तरह का विपद आएगा जीवन में, कह नहीं सकते। पदम पदम यद विपदाम। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं और श्री कृष्ण को नाथ मानते हैं, तो उनको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो विपदों वाले जगत को छोड़कर वो वैकुंठ में जाते हैं, कुंठ वाले जगत को छोड़कर ऐसे जगत में जाते हैं जहां कोई कुंठ नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। तो ऐसे नाथ को हमें स्वीकार करना चाहिए। वृंदावन के दो नाथ हैं, कौन से नाम हैं वृंदावन के दो नाथ? गोपीनाथ, बहुत अच्छा। गोपीनाथ एक नाथ है, विग्रह है, जो महत्वपूर्ण विग्रह हैं, श्रीनाथ, श्रीनाथ जी जो माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किए थे, जो माधवेंद्रपुरी को प्राप्त हुए जो विग्रह है, जो वज्रनाभ ने बनाए हुए थे 5000 वर्ष पूर्व। तो माधवेंद्रपुरी ने श्री गोपाल जी को गोवर्धन के ऊपर स्थापित किया गोपाल जी के इच्छा अनुसार, और बाद में मुगलों के आक्रमण के डर से गोपाल जी को भक्त ले गए नाथ द्वारा में, राजस्थान में, और वहां वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय के भक्तों द्वारा पूजित हैं, सेवित हैं। वहां पर उनको श्रीनाथ जी कहते हैं, श्रीनाथ। राधारानी का और एक नाम है श्री, क्योंकि वो आदि लक्ष्मी है ना, जैसे श्री कृष्ण आदि नारायण है, मूल नारायण है, उसी प्रकार से श्रीमती राधारानी मूल लक्ष्मी देवी है। तो श्रीनाथ जी का मतलब है राधारानी के नाथ, तो श्रीनाथ, और दूसरे हैं गोपीनाथ। और देव भी हैं, कौन से हैं देव? हम बलराम जयंती के दिन चर्चा कर रहे थे वृंदावन के चार देव कौन से हैं, गोवर्धन के हरिदेव, फिर वृंदावन के गोविंद देव, मथुरा के केशव देव और बलदेव के बलदेव। ये चार देव हैं और ये दो नाथ हैं, और दो गोपाल कौन से हैं, साक्षी गोपाल, जो कि इस समय कहाँ है, इस समय उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, कटक के पास में है, कटक शहर के पास में। और दूसरे कौन से हैं, मदन गोपाल। जो कि आज मदन मोहन के नाम से जाने जाते हैं। तो वृंदावन के ये महत्वपूर्ण विग्रह हैं जो वज्रनाभ ने स्थापित किए थे, ये दो गोपाल, दो नाथ, चार देव, तो ऐसे चार महादेव भी हैं और चार देवियां भी हैं, ऐसे और अनेक विग्रहों की स्थापना की थी वज्रनाभ ने। तो यदि हमने भी श्रीनाथ जी और गोपीनाथ जी के शरण को ग्रहण किया जो हमारे सच्चे नाथ हैं, तो हम भी इस भौतिक सागर को पार कर पाएंगे। देव कई हैं, परंतु हमें पूरा आश्रय कोई नहीं दे पाएगा, केवल जो सबसे बड़े देव हैं अच्युत कृष्ण वही दे पाएंगे संपूर्ण आश्रय। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए ऐसे भागवत में कहा गया है कि जिस प्रकार से नदियों में से निम्न गानाम, अच्छा जो नीचे आती हैं ऊपर से जो नदियां हैं, उनमें से गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जो देव हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ अच्युत हैं, जो वैष्णव हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ शिवजी हैं शंभु, उसी प्रकार से जितने भी पुराण हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ ये भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत है। तो जब ये कहा जाता है कि देवानाम अच्युतो यथा, कहने का तात्पर्य है कि अन्य देव च्युत हैं और केवल कृष्ण अच्युत हैं, इसलिए केवल अच्युत श्री कृष्ण का आश्रय हम सबको लेना चाहिए। इस प्रकार से सुरभि महारानी अभी श्री कृष्ण के शरण को ग्रहण कर रही हैं और बड़ा आनंद उनको मिल रहा है। श्री कृष्ण के शरण को ग्रहण करने के बाद और आगे सुरभि देवी बोलती हैं, कह रही हैं, त्वम नः परमकं दैवं, त्वम नो इंद्रो जगत्पते, भवाय भवगो विप्र, देवानां ये च साधवः। त्वम नः परमकं दैवं, त्वम आप नः हमारे, परमकं दैवं आप हमारे परम देवता हैं। अभी भव आप हो जाइए, भवाय कल्याण करने के लिए, किनके ऊपर, गो विप्र देव और साधु, गायों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, देवताओं के ऊपर और भक्तों के ऊपर, कल्याण करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए अभी आप हो जाइए। भव क्या हो जाइए आप, त्वम न इंद्र जगतपते, हे जगतपति अभी आप इन सब के इंद्र हो जाइए, क्योंकि आप ही सच्चे इंद्र हैं, वास्तव में ये नकली इंद्र हैं, सच्चे इंद्र आप हैं। इंद्र शब्द का अर्थ क्या है, जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है या राजा, तो इंद्र शब्द का तात्पर्य है राजा। तो सच्चे राजा कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। बाकी जितने भी राजाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। इंद्र की बात तो क्या है, बाकी जितने भी देवतागण हैं वो सब श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो वास्तव में मूल ब्रह्मा तो कृष्ण है, मूल शिवजी तो कृष्ण है, असली जो इंद्र हैं वो भी कृष्ण हैं। ऐसा क्यों, ब्रह्मा जी जो भी करते हैं सृष्टि का सृजन का कार्य करते हैं, वो शक्ति कहां से आती है, श्री कृष्ण से आती है। ब्रह्मा जी पहले ब्राह्मण हैं इस ब्रह्मांड के, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, तो ब्रह्मा जी ब्रह्म को जानते हैं किसकी कृपा से, भगवान की कृपा से। तो भगवान पूरी तरह से ब्रह्म को जानते हैं, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, तो मैं वेदों को जानता हूं, सारा ज्ञान मैं जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, तो मूल ब्रह्मा, असली ब्रह्मा तो कृष्ण है। शिव जी, शिव का मतलब है मंगल, शिव। अब शिव शिव कहते हैं तो मंगल, मांगल्य का आह्वान करते हैं हम शिव शिव कह के। तो सबसे मूल मंगल वस्तु या व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण। बल्कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं भगवान की, शीघ्र ही शुभ को या मंगल को प्राप्त करते हैं। भक्ति का एक लक्षण है शुभदा, वो मंगल को प्रदान करती है भक्त के जीवन में। तो यहां पर सुरभि देवी कह रही हैं कि वास्तव में हे कृष्ण, आप ही हमारे सच्चे राजा हैं, आप ही इंद्र बनिए और हम सबकी रक्षा करिए। ऐसे होता है कि कभी कभी जब श्री कृष्ण को ऐसे कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है ब्रह्मा जी के पद के लिए, इंद्रदेव के पद के लिए, तो किसी अपने आप को ही उस पद में बिठा देते हैं। कभी कभी ऐसे प्रधानमंत्री को कोई योग्य मंत्री नहीं मिलता तो वो भी दूसरे किसी मंत्रालय को भी संभाल लेते हैं, है ना। प्रधानमंत्री कोई रक्षा मंत्री भी संभाल लेगा थोड़ी देर के लिए, फिर जब रक्षा मंत्री नियुक्त हो जाएगा तो फिर वो छोड़ देंगे, चलो अभी आप संभालो रक्षा मंत्री। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं भगवान को इन ऊंचे पदों के लिए ब्रह्मांड के भीतर, तो भगवान को स्वयं बनना पड़ता है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं, उनकी आयु इतनी होती है, उनके 100 वर्ष, और उनके सौ वर्षों में हरेक वर्ष में 360 दिन होते हैं, और एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, और ऐसे दिन के 14 भाग होते हैं। हरेक भाग को मनमंत्र कहा जाता है, और हरेक मनमंत्र में एक मनमंत्र अवतार होते हैं। ये मनमंत्र अवतार भगवान के ही रूप होते हैं जो कि उस मनमंत्र के लिए अर्थात 71 चतुर्युगों के लिए वो इंद्रदेव को नियुक्त करते हैं, सप्तर्षियों को नियुक्त करते हैं, उस मनमंत्र के मनु कौन होंगे उनको नियुक्त करते हैं, और मनु के जो प्रमुख पुत्र होंगे इनको भी नियुक्त करते हैं, क्योंकि मनु का पुत्र आगे चल के राजा बनेगा ना। इसलिए मनमंत्र अवतार जो होते हैं वो इन सबको नियुक्त करते हैं। ब्रह्मा जी के हर एक दिवस में 14 बार ऐसे होता है, और इनमें से 14 मनमंत्रों में अलग अलग मनु होते हैं, अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग लोग सप्तर्षि बनते हैं, और अलग अलग भगवान के अवतार भी होते हैं जिनको मनमंत्र अवतार कहते हैं। पहले मनु का नाम क्या था? स्वयंभुव। दूसरे स्वारोचिष। तीसरे फिर उत्तम, रैवत, तामस, चाक्षुष, अभी वैवस्वत। वैवस्वत मनु वैवस्वान सूर्यदेव के पुत्र हैं, ये 7वें मनु हैं। पहले मनमंत्र में जब स्वयंभुव मनु, ये मनु थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उस मनमंत्र में भगवान का अवतार था, अर्थात जो मनमंत्र अवतार था वो था यज्ञ मूर्ति या यज्ञ, तो भगवान का नाम था यज्ञ उस मनमंत्र में। और उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं ये थोड़े दुष्ट लोग, तो मुझे ही यहां बनना चाहिए इंद्र, तो स्वयं भगवान यज्ञ ही इंद्र बने उस मनमंत्र में। तो ऐसे भी कभी कभी होता है जब कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, स्वयं भगवान भी इंद्र हो जाते हैं, क्योंकि वो इंद्र भी जो है भगवान की शक्ति ही का तो प्रयोग कर रहे हैं, भगवान ने दिए हुए शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और इस 7वें मनमंत्र में हमारे अवतार कौन है? मनमंत्र अवतार कौन है? वामन देव। इस मनमंत्र के लिए वामन देव मनमंत्र अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है इस युग के लिए, इस कलयुग के लिए। ये तो 28वां चतुर्युग चल रहा है इस एक मनमंत्र के भीतर, और इस 28वें चतुर्युग के भीतर कलयुग जो होता है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं और श्री कृष्ण इसके पहले वाले द्वापर में आते हैं। तो वामन देव ये इस मनमंत्र के अवतार हैं। तो इन्होंने विवस्वान के पुत्र वैवस्वत को मनु बनाया। इस मनु का नाम है श्राद्ध देव, और उन्होंने एक और पुण्य व्यक्ति को चुना इंद्र के पद के लिए। उस व्यक्ति का नाम क्या है, हमारे इंद्र के का नाम क्या है? पुरंदर। तो जब हम इंद्र की बात कर रहे हैं ना, ये इंद्र एक पद है, लेकिन जिस व्यक्ति की बात अब हो रही है उनका वास्तविक नाम है पुरंदर। जैसे यदि हम बात करें प्रधानमंत्री 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 ने ऐसे किया प्रधानमंत्री ने वैसे किया, लेकिन प्रधानमंत्री का भी कोई नाम है ना। ठीक उसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि इंद्रदेव ने ऐसे किया इंद्रदेव ने वैसे किया, परंतु इंद्रदेव का भी नाम तो है। हाँ, पुरंदर। और इस हर एक मन्वंतर में सप्तर्षि भी होते हैं। जैसे कि इस मन्वंतर में सप्तर्षि हैं कश्यप मुनि, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गलव, दीप्तिमान आदि, ऐसे सब ये सप्तर्षि हैं इस मन्वंतर के लिए। और आठवें मन्वंतर से लेकर और भी मनु होने वाले हैं, सावर्णी, धर्म सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, देव सावर्णी, रुद्र सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ऐसे इनके नाम होंगे। और अगले मन्वंतर में इंद्र कौन बनेंगे? बलि महाराज। देखिए, जो इंद्र के शत्रु थे लेकिन भगवान का शरण उन्होंने ग्रहण किया। तो क्योंकि भगवान का शरण उन्होंने स्वीकार किया तो श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए बलि महाराज के ऊपर। वो तुरंत इंद्र बनाना चाहते थे, फिर सोचा नहीं बेचारा पुरंदर फिर विचलित हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, जब ये 5 साल पूरे हो जाएंगे ना, जिसमें ये सरकार 5 साल के लिए है, चुनाव आ ही जाएगा तो दूसरा कोई सरकार आ जाएगा, तो चलो 5 साल के अंत तक जरा रुक जाते हैं। तो अभी इस मन्वंतर के अंत तक अब केवल कितने बचे हैं, 30-40 चतुर्युग बचे हैं मात्र। तो इसमें हमारे पुरंदर को रहने दो, इंद्र आखिर मेरा भी सेवक है, ये मेरी सेवा बेचारा कर रहा है, कभी कभी भ्रमित हो जाता है लेकिन है मेरा सेवक। और अगले मन्वंतर में मैं बलि महाराज को इंद्र बनाऊंगा। तो तब तक बलि महाराज को क्या करना चाहिए फिर? तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि हाँ, अभी बलि महाराज के लिए कोई ऐसे एक योग्य श्रेष्ठ स्थान देना चाहिए। तो उन्होंने सुतल लोक में उनको स्थान दिया, जो पृथ्वी लोक से निम्न श्रेणी में है, परंतु सुतल लोक का में ऐसा ऐश्वर्य है जो इंद्रदेव इंद्रलोक से भी ज्यादा है। तो ऐसी कृपा भगवान ने बलि महाराज के ऊपर की कि उनको स्वर्गलोक से भी ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान किया। और इतना ही नहीं, बलि महाराज के सुतलोक के द्वार पर वो खड़े हैं अभी भी द्वारपाल बनकर। तो इसका मतलब है कि कोई देव का पद स्वीकार करता है या भक्त का पद स्वीकार करता है, भक्त एक पदवी नहीं है, परंतु यदि केवल औपचारिकता के लिए कोई भक्त कहलाता है परंतु हृदय से भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति भाव उतना तीव्र नहीं है, तो भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। बलि महाराज देखा जाए तो बाहरी दृष्टि से असुर थे, उनका जन्म एक असुर कुल में हुआ था, वो हिरण्यकश्यप के वंशज थे। उनका एक सौभाग्य था कि उनके जो दादा थे वो प्रह्लाद महाराज थे, प्रह्लाद महाराज की कृपा उनको मिली थी। प्रह्लाद महाराज के पुत्र का नाम था विरोचन, विरोचन के नाम के पुत्र का नाम बलि महाराज। तो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की, इंद्रलोक से ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान किया और सारे वरदान बलि महाराज के दिए कि तुम्हें इस मनमंत्र के अंत तक कोई शारीरिक और मानसिक तनाव नहीं होगा, कोई भी सुतर लोक के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा और मैं स्वयं रक्षा करूंगा तुम्हारे सुतर लोक की, कोई कठिनाई नहीं होगी, तुम यहां इस सारे मनमंत्र तक, इस मनमंत्र के अंत तक तुम यहीं पर रहो बड़े आराम से, और अगला मनमंत्र जब हो जाएगा तो उसमें तुम इंद्र बन जाना। और उस समय सप्तर्षि और कौन कौन बनेंगे पता है आपको? परशुराम एक हैं और अश्वत्थामा, व्यासदेव, कृपाचार्य जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से कौरवों के पक्ष से गिने चुने ही बचे थे ना, उनमें से कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब अभी तक जीवित हैं, परंतु गुप्त रूप से सूक्ष्म रूप में इधर उधर स्थान में हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं, मनमंत्र के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब अगले मनमंत्र में वो सप्तर्षि बन जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे पद हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा आदि, और कोई व्यक्ति पद को स्वीकार करता है या उसे पद प्रदान किया जाता है और वो ठीक से पद को संभाल नहीं पाता, या तो ऐसे कार्य करता है जो उसके लिए योग्य या उचित नहीं है, तो भगवान उसे दंड देते हैं, क्योंकि भगवान ही वास्तव में सर्वस्व है, भगवान ही वास्तविक इंद्र हैं, भगवान ही वास्तविक चंद्र हैं, वरुण हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। तो इसी बात को स्पष्ट करना चाहती हैं सुरभि देवी, और कहते हैं कि आप गायों के, भक्तों के, देवताओं के और हम सब के आप नाथ बनिए, आप इंद्र बनिए। तो ऐसे कह के भगवान कृष्ण को सुरभि माता प्रसन्न करती हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण को इंद्र की आवश्यकता नहीं है, न चंद्र की, वरुण देव की, किसी भी देवता की आवश्यकता श्री कृष्ण को नहीं है। श्री कृष्ण समर्थ है, वो सृष्टि का कार्य अपने आप संभाल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर देवता हैं क्यों? क्योंकि ये देवता जो हैं, ये भगवान के भक्त हैं, और भगवान सोचते हैं कि ये ब्रह्मांड में हैं, पूरी तरह से मुक्त तो हुए नहीं हैं ये, और ये ब्रह्मांड को तो चलाना है, कितने बद्ध जीव हैं यहाँ जो स्वप्न देख रहे हैं झूठे भोगी बनने की, स्वामी बनने की, तो ये ब्रह्मांड को चलाते रहना है, और ये भी थोड़े मेरे भक्त हैं जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं, और उनको भी थोड़ा कुछ ऐश्वर्य आदि से आसक्ति है, पुण्यात्माएं हैं, तो चलो इनको देवता का पद दिला दो, क्योंकि वो योग्यता है इनमें। तो वो अपने भक्तों को सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। देखिए, सेवा हमारे लिए सब कुछ है, हमारी सेवा ही छीन ली जाएगी तो हम क्या करेंगे? भगवान की सेवा ये एकमात्र धन हमारे पास है, तो हर एक भक्त चाहता है कि हमारी एक सेवा होनी चाहिए कृष्ण के लिए। इसलिए आप में से हर एक भक्त आपका अधिकार समझ के सेवा लीजिए मंदिर में, आपका ये मुझे भी सेवा चाहिए। हर एक भक्त को मंदिर में कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए, बिना सेवा हमारा जीवन अधूरा है, हमारी भक्ति भी अधूरी रह जाती है, कि भक्ति का मतलब ही है सेवा। तो हमारी जो प्रमुख सेवा होती है वो है श्रवण कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप और कीर्तन करना, और कथा कीर्तन का श्रवण करना, दर्शन करना, ये तो सेवा है ही, प्रमुख सेवा है। इससे अतिरिक्त भी हमें कोई और सेवा स्वीकार करने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मन उस सेवा के बारे में तो कम से कम चिंतन करता रहेगा, जिससे कि हमारा मन संसार में इधर उधर नहीं भटकेगा। और यहां पर सुरभि देवी बताना चाहती हैं कि जो भी ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं या छोटी जिम्मेदारी लेते हैं, उनको कभी भी इस जिम्मेदारी के प्रति घमंड नहीं होना चाहिए। इंद्रदेव बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कोई व्यक्ति यहां मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर छोटी जिम्मेदारी संभालता है, परंतु छोटी हो या बड़ी, किसी को अपने जिम्मेदारी को स्वीकार करके एक पद को प्राप्त करके कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बाहर हो या अंदर हो, ये इंद्रदेव के जीवनी से, गोवर्धन लीला से हमें ये उपदेश अवश्य मिलता है। आगे सुरभि देवी कहती हैं, इंद्रम न स्वाभिषेक्यामो ब्रह्मणा चोदिता वयम् अवतारणीनोऽसि विश्वात्मन् भूमेर्भारा पुनप्तये। इंद्रम नः त्वा अभिषेक्यामो, हमारे वह मतलब हमारे इंद्र बन के त्वा आप अभिषेक्यामः, हम आपका अभिषेक अनुष्ठान मनाएंगे। सुरभि ऐसे श्री कृष्ण से कह रही है, ब्रह्मणा चोदिता वयम, जिस प्रकार से आदि ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने हमें उपदेश दिया था वैसे ही मैं कह रही हूं अभी। अवतीर्णो असि विश्वात्मन भूमेर भार अपनुत्तये, इस भूमि के भार को कम करने के लिए हे कृष्ण आप अवतीर्ण हुए हैं, तो ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हो सकता है श्री कृष्ण ने सुरभि से पूछा होगा कि तुम मेरा अभिषेक करना चाहती हो, डायरेक्ट सेवा में आना चाहती हो, सीधे प्रत्यक्ष रूप से, तो ये तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है या कोई अधिकारी व्यक्ति ने तुम्हें आदेश दिया है कि जाओ श्री कृष्ण की सेवा करो। तो सुरभि देव उत्तर दे रही है, ब्रह्मणा चोदिता वयम, कि जब इंद्र को ये पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तो इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी इस बात को सुनकर थोड़ा डर गए थे कि अरे इंद्रदेव तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने भी किया था, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और सुरभि आओ, तुम लेकर जाना इंद्र को और कृष्ण की क्षमा को दिला देना इसे, ताकि ये क्षमित हो जाए श्री कृष्ण के कर कमलों से। और फिर मुझे कहा ब्रह्मदेव ने कि हे सुरभि देखो, श्री कृष्ण परम कृपालु हैं और तुम्हारे रक्षक हैं, तुम्हारे वंशजों के रक्षक हैं, तो जाओ उनका अभिषेक करो, तो इसलिए मैं आई हूं आपका अभिषेक करने के लिए। तो सुरभि देवी अब अभिषेक करने के लिए तैयार हुई हैं और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण भी तैयार हुए इस अभिषेक को स्वीकार करने के लिए। राज्याभिषेक होना था अभी, श्री कृष्ण को इंद्र के रूप में, इंद्र के सिंहासन पर बिठाकर अभी राज्याभिषेक होना था और श्री कृष्ण ने स्वीकार किया इस राज्याभिषेक को। श्री शुक उवाच एवं कृष्णम उपामंत्र्य सुरभिः पयसात्मनः जलैराकाश गंगाया ऐरावत करोद्धृतैः इन्द्रः सुर ऋषिभिः साकं चोदितो देवमातृभिः अभ्यसिंचत दशार्हं गोविंद इति चाभ्यध्यात। एवं कृष्णम उपामंत्र्य, और कृष्ण को इस प्रकार से निवेदन करके सुरभि पयस आत्मनः, पयस मतलब दूध, आत्मनः मतलब अपना, अपने दूध से सुरभि देवी श्री कृष्ण को अभिषेक करना प्रारंभ कर दी, दूध का अभिषेक। जलैर आकाश गंगाय ऐरावत करोद्धृतैहि, और ऐरावत जो कि इंद्र के हाथी हैं, इंद्र के वाहन हैं, उन्होंने अपने सूंड में आकाश गंगा का जल स्वीकार किया था। आकाश गंगा जो है वो गंगा जी बहते हुई आती है, तीनों लोकों में बहती है। जब वो स्वर्ग लोक में होती है तो आकाश गंगा जी को का नाम होता है मंदाकिनी। यहाँ पे है गंगा या अलकनंदा, और पाताल लोक में है भोगवती। तो वही मंदाकिनी आकाश पथ से होते हुए यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आती है। तो ऐरावत ने स्वर्ग लोक के गंगा से जल लेकर अपने सूट में रखा था। ऐरावत कोई साधारण हाथी नहीं है, ऐरावत का जन्म तो समुद्र मंथन में हुआ था, तो इसलिए उसने बहुत सारा जल भर के रखा, और फिर ऐसे आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इंद्रः सुर ऋषिभिः साकम्, इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ और ऋषियों के साथ में, चोदितो देव मातृभिः अभ्यसिंचत दशार्हम्, तो इंद्रदेव ने भी अभ्यसिंचत अर्थात अभिषेक करना प्रारंभ किया, लेकिन उनको थोड़ी प्रेरित करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इंद्रदेव थोड़े संकोच की अवस्था में थे, थोड़े घबराए से हुए थे कि मैं आगे जाऊं कि नहीं अभिषेक करने के लिए कृष्ण का, क्योंकि मैंने कृष्ण के प्रति इतना अपराध किया है। इसलिए यहाँ शुकदेव जी बताते हैं, चोदितो देव मात्र भी, देवताओं के जो माताएं हैं जैसे अदिति आदि, उन्होंने इंद्रदेव से कहा नहीं जाओ बेटा, जाओ जाओ करो अभिषेक करो, तुम जाओ डरो नहीं, जाओ आगे बढ़ाओ। तो फिर इंद्रदेव और अन्य देवतागण जो है वो साहस लेकर आगे चले आए और उन्होंने कृष्ण का अभिषेक किया, जो कि दशार्हम, दशार्हम का मतलब राजा दशार के वंशज में आने वाले। जैसे श्री कृष्ण को कभी कभी वृष्णिवंशी कहते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ वो दशार है, राजा दशार्ह के वंश में आते हैं। गोविंद इति च अभ्य धात, और इंद्रदेव ने कृष्ण का नाम रखा गोविंद, नामकरण हुआ। नया जब कोई राजा हो जाता है ना तो उसको नया नाम दिया जाता है, पहले वो राजकुमार होता है, पर जब राजा हो जाता है राज्याभिषेक के बाद तो उसे कोई बड़ा खास नाम मिलता है, राजाधिराज विश्व सम्राट जो भी है नाम मिल जाता है ना। तो अभी राज्याभिषेक हुआ था तो नया नाम मिलना था कृष्ण को, तो इंद्रदेव ने कौन सा नाम दिया, गोविंद। ये राज्य वो विश्व सम्राट ये वो महाधिराज वो सब नहीं दिया, क्यों, क्योंकि इंद्रदेव जानते थे कि ये राजाधिराज इराज आदि से कृष्ण इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। एक भगवान कृष्ण राजा बनने से इतना प्रसन्न नहीं होते हैं कि जितना एक वो साधारण ग्वाल बाल बन के आनंद लेते हैं, इसलिए क्योंकि इंद्र जानते थे कि कृष्ण ग्वाल बाल बनना कितना पसंद करते हैं और गायों का देखभाल करना उनको कितना अच्छा लगता है, इसलिए इंद्र ने उनका नाम दिया गोविंद, जो इंद्रियों को और गायों को आनंद प्रदान करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं गो शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। गो शब्द का अर्थ है, एक अर्थ है गाय, विंद का अर्थ है रक्षा, तो गोविंद है जो गाय की रक्षा करते हैं और रक्षा करके उनको आनंद देते हैं। ग शब्द का अर्थ इंद्रियां भी है, और विंद का अर्थ है रक्षा करना या पोषण करना। तो भगवान श्री कृष्ण गोविंद हैं जो कि अपने भक्तों की रक्षा और पोषण करते हैं उनके इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करके। तो ये है गोविंद शब्द का और एक अर्थ। तीसरा अर्थ बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि गो शब्द का अर्थ है स्वर्ग और गोविंद का मतलब है वो जो इंद्र बन के स्वर्ग का भोग करने के लिए योग्य है, जो असली इंद्र। तो गोविंद शब्द का अर्थ ये भी है कि जो असली मूल इंद्र है। इस प्रकार से यहां अभिषेक हुआ, जिस स्थान में अभिषेक हुआ उस स्थान का नाम क्या है? गोविंद कुंड। वास्तव में एक टीले पर हुआ, छोटे से पहाड़ पर हुआ, जिसका नाम है इंद्र टीला। और वहां से ये सारे अभिषेक का जल और ये सुरभि का दूध और तुलसी मंजरियां और शहद और जितने भी नाना प्रकार के पदार्थों से श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ था, वो सारे पदार्थ आके जम गए और वहां गोविंद कुंड निर्माण हुआ। तो पहले जो गोविंद कुंड था उसमें भगवान का चरणामृत था। तो हमें जानना चाहिए कि ये गोविंद कुंड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मथुरा खंड में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस गोविंद कुंड में एक बार भी स्नान करता है वो मुक्त हो जाता है। आप में से कितने भक्त गोविंद कुंड में गए हैं? ठीक है, तो आप सब मुक्त हो गए। फिर भी मंदिर आना है आपको, ऐसा नहीं सोचे अभी मुक्त हो गए तो अभी चलो अभी जप करने की आवश्यकता नहीं। हाँ? क्योंकि गोविंद कुंड में, गोविंद में और गोकुल आनंद में कोई अंतर नहीं है। वहां पर चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, उन्होंने भी गोविंद कुंड में स्नान किया था गोवर्धन की परिक्रमा करते समय, जबकि वो गोपाल जी का दर्शन करने के लिए आए थे और गोपाल जी की मूर्ति गांठुली ग्राम में भक्तों ने स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि मुगलों के आक्रमण का डर था वहां पर। यहां गोवर्धन के पास जो गोविंद कुंड है उसके वो अणियोर भी पास में ही है, वहां कई लीलाएं हुई थी और इस गोविंद कुंड में माधवेंद्रपुरी भी आए थे। भ्रमण करते करते जब ब्रज में पहुंचे थे और गोवर्धन में आए तो गोविंद कुंड के पास में वहीं पर बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, जबकि गोपाल जी उनके पास आए एक ग्वाल बाल के रूप में और उनको उन्होंने दूध पिलाया और कहा कि मैं अभी आ रहा हूं इस पात्र को वापस लेने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। माधवेंद्रपुरी रात देखते रह गए और क्योंकि वो थके हुए थे नींद की झपकी आ गई और उनको सपने में वही गोपाल जी प्रकट हुए और कहा कि माधवेंद्र पुरी मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, मैं झाड़ियों में छुपा हुआ हूं, मुगलों के आक्रमण के डर से मेरे पुजारियों ने मुझे वहां छुपा दिया था, अब मुझे बाहर निकालो और धूमधाम से मेरी प्राण प्रतिष्ठा ऊपर करो गोवर्धन के ऊपर। माधवेंद्र पुरी ने ऐसे ही किया और बाद में वही मूर्ति गोपाल जी की मूर्ति अब नाथ द्वारा में है श्रीनाथ जी। तो ये सारी लीलाएं गोविंद कुंड पर हुई। तो गोविंद कुंड में आप में से जो गए हैं अवश्य आपने ये सब कहानियां ये सब लीलाएं सुनी होंगी। तो किस प्रकार से अभिषेक हुआ इसका वर्णन हम कल सुनेंगे और इस अध्याय की समाप्ति कल ही कर देंगे। फिर इसके बाद अगला अध्याय है जन्माष्टमी तक। इंद्रदेव ने गलती तो इस अध्याय में की, अब वरुण देव ने गलती क्या की वो अगले अध्याय में जाकर हम सुनेंगे। ठीक है, तो अभी हम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करेंगे और विशेष करके इनके वृंदावन धाम का गुणगान करेंगे। हरे कृष्ण।